मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
सिनेमा सिनेमा यानी हिंदुस्तानी सिनेमा और उसके दर्शकों की रसीली कहानी, जिसे पर्दे पर पेश कर रहे हैं फिल्मों से प्यार करने वाले राइटर डायरेक्टर कृष्णा शाह।
मैं अमेरिका के हॉलीवुड में रहता हूं, मगर हिंदुस्तान के हॉलीवुड बंबई को कभी नहीं भूल पाता, क्योंकि यहां की फिल्मी दुनिया में वो तो है जो हॉलीवुड में है, बल्कि वो सब कुछ है जो हॉलीवुड में नहीं है। जी हाँ, हिंदुस्तानियों जैसे फिल्मों के दीवाने दर्शक और कहीं नहीं है।
खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। तुम तीर चलाना छोड़ दो।
सिनेमा सिनेमा के अलबेले दर्शकों की बारात के दो दूल्हे हैं धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, दो दुल्हने हैं हेमा मालिनी और जीना तमान। तो आइए हम भी शरीक हो जाएं दीवानों के इस मेले में।
आप फिल्मों के पीछे दीवाने हैं और हम इंडस्ट्री वाले आपके शुक्रगुजार। शायद आपको मालूम नहीं कि हमारे फिल्मों का पहला दौर खामोश फिल्मों का था। उसी दौरान 1913 में हॉलीवुड से एक फिल्म भारत आई, जिसका नाम था यीशु मसीह का जीवन। इस फिल्म को एक हिंदुस्तानी ने देखा, जिनका नाम था दादा साहब फाल्के।
दादा साहब फाल्के ने कैमरे की चाबी से मनोरंजन की दुनिया के नए दरवाजे खोल दिए। उनकी रखी नींव पर आज हिंदुस्तानी सिनेमा का महल खड़ा है।
पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले।
लंबू आएगा और लंबू।
खामोश फिल्मों से बोलती फिल्मों का दरमियानी वक्त बड़ी अहमियत रखता है। उसी समय फिल्म बनी लाइट ऑफ एशिया, जो गौतम बुद्ध के जीवन पर
১৯২৭ में हिंदुस्तान की कौमी जमीन पर असंतोष फैल रहा था,
और इसी वक्त वो करिश्मा हुआ जिसे दुनिया भर ने हैरत से देखा। फिल्मों में आवाज का आवाज।
लेकिन उस वक्त एक हिंदुस्तानी अरिदिशर ईरानी ने कमाल कर दिखाया। पहली बोलती फिल्म बनाई 1931 में, फिल्म का नाम था आलम आरा।
आलम आरा को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली। 1933 में 75 हिंदुस्तानी फिल्में बनी।
इन सभी फिल्मों में एक खास बात यह थी कि ये फिल्में गानों से भरी हुई थी। कुछ फिल्मों में 40 गाने और एक फिल्म में तो 60 की गिनती थी। जी हाँ, 60 सॉन्ग्स इन वन फिल्म।
हर फूल को ये समझाती है मत भूल मुसाफिर तुझे जाना ही पड़ेगा मत भूल मुसाफिर
आवाज ने हिंदुस्तानी फिल्मों को एक नया मोड़ दिया। साहित्य कहानियों पर बनी हुई फिल्मों के साथ ही हिंदुस्तानी फिल्मों का सुनहरी दौर शुरू हो गया। छत्तीस के ऐसे दौर में एक फिल्म बनी
जिसका नाम था अछूत कन्या। इस फिल्म की हीरोइन थी देविका रानी। देविका रानी जो खुद ब्राह्मण जात की थी, उन्होंने अछूत लड़की बनने की हिम्मत की।
बन बन डोलता हुआ सिनेमा का पंछी जब सन 1940-50 के दौर से गुजरा तो मनोरंजन के इतिहास पर अपनी सुनहरी परछाई छोड़ गया। इस दौरान फिल्मी कलम ने जोरदार कहानियां लिखी और फिल्मी संगीत ने लिखा सरगम का सुरीला अफसाना।
अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का आंखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहे ता है मुँह भी, जी चाहे ता है मुँह भी, ना देखूं बहार का
तेरे इंतजार का अफसाना
लिख रही। राग तू मेरी रागनी, मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। अरे यार मेरे बाप का फेवरेट गाना है, चल
सुनने जाएंगे। निकल गाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी।
क्या बजा रहा है? अबे ओ पकड़ अल्लाह।
मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग।
अरे तेरे बाप का वही गाना चल रहा है।
वही चल रहा है, चल चल।
नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई
गाए जगीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी, काहे बरसे जल। तुझ बिन सोनी साजन की नगरी, परदेसी आ घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के, तेरे दर्शन के सजन घर जाना है।
मेरे पिया वो मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती
सफर मेरा ही, मिलते हैं बिछड़ जाने को।
कोई भी बिछड़ जाए देव साहब, जब भी तुम फिल्म बनाओगे हम देखने आएंगे।
बिछड़ पाने को जीवन के सफर मेरा ही, मिलते हैं बिछड़ जाने को। और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को।
गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो।
गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो।
उनतालीस में अंग्रेजों ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तभी अंग्रेज हुकूमत ने एक और ऐलान किया कि प्रोड्यूसर्स को फिल्म बनाने के लिए रॉस्टॉक उस वक्त मिलेगा जब वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो जंग के लिए मददगार साबित हो। फिल्म बनी, लेकिन बजाय इसके कि वो फिल्म जंग के लिए मददगार साबित हो, आजादी का पैगाम साबित हुई।
आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
महल है और कुतुब मीनारा है,
जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है,
जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है,
जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है।
धरती पर कदम
में अंग्रेजों ने अपने साथियों की मदद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत ली। 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, मुल्क के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, करोड़ों शरणार्थी एक मुल्क से दूसरे मुल्क मरते खपते पहुंचे, लाखों मारे गए, खून खराबा हुआ, हजारों औरतों की बेइज्जती हुई, 25 लाख लोग काट डाले गए, तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ लोग बेघर हुए।
ठीक 1 साल बाद अहिंसा, भाईचारे और अमन के अजीम रहनुमा महात्मा गांधी का नाथूराम गौडसे के हाथों खून हुआ।
हे
फिर तो मुसीबतों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कीमतें बढ़ने लगी, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा, बंगाल में जबरदस्त सैलाब आया, कश्मीर में जंग छिड़ गई, बिहार में अकाल पड़ा और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती गई।
और देश की इस बदलती हुई हालत को हिंदुस्तानी फिल्म बनाने वालों ने पहचान लिया, गरीबी और बेरोजगारी की वजह को समझ लिया।
2 बीघा जमीन ने किसानों की तकलीफ को पेश किया।
हजूर मैं साहब न गरीब बिल्कुल मारा जाऊंगा। हजूर हजूर थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। हजूर मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा। हजूर हजूर मैं बाप ने आपके पांव पकड़ा हजूर।
आज जिसके पांव पकड़ रहा है कल उसी से सीना तान कर कह रहा था कि जमीन नहीं बेचूंगा।
हजूर
बस अब जो कुछ कहना है कचहरी में कहना।
फिल्म फुटपाथ ने भ्रष्टाचार को बेनकाब किया।
वही आदमी समझ के मुझ पर चाकू चला दो तुम, मैं मर जाऊंगा तो वो भी मर जाएगा। बुजदिल हो तुम,
जब मुझ जैसे एक पैसा बनाने वाले बुजदिल को नहीं मार सकते तो सच लिखने वाले जीदार को तुम कैसे मारेगा?
अरे नहीं नहीं जरूर 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 मारेगा।
अरे क्या जरूर मारेगा।
उन्हीं दिनों एक और फिल्म आई जिसका नाम था प्यासा और जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे गुरुदत्त।
प्यासा हमारी इस बेरहम दुनिया के बीच रहने वाले एक शायर की रूहानी तकलीफों की कहानी थी जिसके आखिरी गीत ने हर हिंदुस्तानी की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया, आहों और आंसू से भर दिया। वो गीत जैसे मरहम बन गया और पूरा मुल्क उसे गाने और गुनगुनाने लगा।
ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे, रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बद हवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली, उनकी मौत ने उन्हीं की फिल्मी मौत को सच साबित कर दिया। गुरुदत्त शायद ये साबित करना चाहते थे कि जिंदगी कला के पीछे पीछे चलती है। खैर, वो मौत तक गए या मौत उन तक आई हो, जो भी हुआ, गुरुदत्त ने प्यासा नाम की अमर कहानी बनाई और खुद कहानी बन गए।
बिछड़े सभी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी।